एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत।
नमस्कार।
आज हम बात करने वाले हैं मार्टिन रेडफर्न की किताब द अर्थ के बारे में। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की कहानी है।
बिल्कुल सही। और ये कहानी आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गई है ना। मतलब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की चुनौतियां, ये सब समझने के लिए पहले ये जानना तो जरूरी है कि हमारा ग्रह काम कैसे करता है।
हाँ एकदम, ये किताब हमें वही समझने में मदद करती है। पृथ्वी को एक एक सिस्टम की तरह देखती है, सब कुछ जुड़ा हुआ।
और रेडफर्न हमें अरबों साल पीछे ले जाते हैं, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे बदली, ताकि हम आज को और आने वाले कल को समझ सकें।
हाँ, और वो भी बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक भाषा के, मतलब आम पाठक के लिए जो दुनिया को पूरी तस्वीर में देखना चाहता है। तो ये मार्टिन रेडफर्न है कौन जिन्होंने इतनी दिलचस्प किताब लिखी है?
मार्टिन रेडफर्न, हाँ, वो एक भूभौतिकीविद हैं, मतलब जियोफिजिस्ट, लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, वो बीबीसी के साइंस रिपोर्टर भी रह चुका है।
अच्छा, तो मतलब उन्हें विज्ञान की गहरी समझ भी है और उसे आम लोगों तक पहुंचाने का हुनर भी।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वो मुश्किल से मुश्किल बातें, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है या ये महाद्वीप कैसे खिसकते हैं,
हाँ,
उसे कहानी की तरह बताते हैं।
जैसे विज्ञान की कहानी सुना रहे हो।
हाँ बिल्कुल, उनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पृथ्वी के लिए एक एक अचरज, एक सम्मान जगाना भी है।
चलिए तो आप किताब पर आते हैं। आपने कहा पृथ्वी की कहानी एक तरह से जीवनी।
हाँ कह सकते हैं, किताब का मूल विचार यह है कि पृथ्वी कोई शांत स्थिर चट्टान नहीं है, ये एक डायनामिक चीज है,
डायनामिक मतलब
मतलब लगातार बदलती हुई, जिसमें जमीन, हवा, पानी, जीवन और अब तो हम इंसान भी सब एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं लगातार।
अच्छा, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है।
हाँ रेडफर्न यही कहते हैं कि पृथ्वी का इतिहास बस कुछ घटनाओं का जोड़ नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है, कैसे इन सब सिस्टम्स ने मिलके वो खास माहौल बनाया जिसमें जीवन पनप सका।
और ये कहानी शुरू होती है 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने से, और आज तक आती है जहां हम इंसान भी एक बड़ी ताकत बन गए हैं।
बिल्कुल, और किताब का एक मकसद ये भी है कि ये जो भूविज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हैं ना,
हाँ,
उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए, ये समझना क्यों जरूरी है कि पृथ्वी कैसे काम करती है, खासकर आज के समय में।
इसमें तो फिर सब कुछ होगा, पृथ्वी की परतें, प्लेट टेक्टोनिक्स, जलवायु।
हाँ, पानी का चक्कर, जीवन का विकास, सब कुछ। और सुना है इसमें तस्वीरें और डायग्राम भी खूब हैं, जैसे कोई म्यूजियम ही हो।
एक पोर्टेबल म्यूजियम, बढ़िया है। तो चलें इस म्यूजियम की सैर पर। शुरुआत कहाँ से करें?
बिल्कुल शुरू से, पृथ्वी बनी कैसे, किताब बताती है धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से, जिसे सौर नेबुला कहते हैं।
और ये बनना शांत नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं, बहुत उथल-पुथल वाला जन्म था। सोचिए, गुरुत्वाकर्षण सब कुछ खींच रहा है अंदर, रेडियो एक्टिव चीजें गर्मी पैदा कर रही हैं, और ऊपर से उल्का पिंडों की बारिश हो रही है।
बाप रे, मतलब शुरुआत में पृथ्वी एक पिघला हुआ आग का गोला थी।
हाँ लगभग वैसा ही, और इसी पिघली हुई हालत में वो हुआ जिसे डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, मतलब परतों का बनना।
डिफरेंसिएशन, वो कैसे? जैसे दूध में मलाई ऊपर आ जाती है?
हाँ कुछ वैसा ही, भारी चीजें जैसे लोहा, निकल, वो खिंचकर केंद्र में चली गई, कोर बन गया, और हल्की चीजें, सिलिकेट वाली चट्टानें, वो ऊपर आ गई, मेंटल और क्रस्ट बन गया।
अच्छा, तो ऐसे बनी पृथ्वी के परते, कोर, मेंटल क्रस्ट, और इसी कोर की वजह से वो चीज बनी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, चुंबकीय क्षेत्र।
एकदम सही, बाहरी कोर में जो पिघला हुआ लोहा बह रहा है उसी से ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
और ये हमें बचाता है सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से।
बिल्कुल, ये एक शील्ड की तरह है, इसके बिना शायद धरती पर जीवन पनप ही नहीं पाता। सोचिए, जमीन के इतने नीचे की हलचल हमें ऊपर कैसे सुरक्षित रखती है।
वाकई कमाल की बात है। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात, पर जमीन की सतह, वो तो हिलती रहती है।
यहीं आता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला सिद्धांत।
हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स आधुनिक भूविज्ञान की रीढ़ है।
ये क्या है असल में, आसान भाषा में?
आसान भाषा में समझ लीजिए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सख्त परत, मतलब क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, प्लेटों में।
अच्छा, जैसे पजल के टुकड़े।
हाँ, कुछ वैसा ही। और ये टुकड़े नीचे की एक थोड़ी नरम पिघली हुई परत पर तैर रहे हैं और हिल रहे हैं लगातार।
तैर रहे हैं, इतनी भारी चीजें हिलाता कौन है इन्हें?
इन्हें हिलाती है मेंटल के अंदर की गर्मी। जैसे पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का ठंडा नीचे जाता है, वैसा ही कुछ मेंटल में पिघली चट्टानों के साथ होता है धीमी गति से, और यही बहाव इन प्लेटों को धकेलता है। बाप रे,
मतलब हमारे पैरों के नीचे जमीन लगातार खिसक रही है।
हाँ, बहुत धीमी रफ्तार से पर खिसक रही है, और जहाँ ये प्लेटें मिलती हैं या टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं,
वहीं पर सारे भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं।
बिल्कुल वहीं पर। तीन तरह की मुख्य बाउंड्री होती हैं। एक जहाँ प्लेटें दूर जा रही हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में, वहाँ नीचे से लावा ऊपर आकर नई जमीन बनाता है।
अच्छा,
दूसरी जहाँ प्लेटें टकरा रही हैं। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर एक समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराए तो भारी समुद्री प्लेट नीचे धस जाती है, इसे सबडक्शन कहते हैं। इससे एंडीज जैसे पहाड़ और ज्वालामुखी बनते हैं,
और अगर दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं,
जैसे अपना हिमालय।
हाँ, जैसे भारत और एशिया की प्लेटें, तब कोई नीचे नहीं धसता, दोनों मुड़के ऊपर उठ जाती हैं और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बन जाते हैं। ये आज भी हो रहा है, हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है।
कमाल है।
और तीसरी तरह की सीमा तीसरी है जहां प्लेटें अगल बगल खिसकती हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट, वहां जबरदस्त भूकंप आते हैं।
तो मतलब भूकंप और ज्वालामुखी, ये सब इसी प्लेट टेक्टोनिक्स का खेल है।
बिल्कुल, प्लेटों के हिलने से चट्टानों में तनाव बनता है, वो टूटती हैं, ऊर्जा निकलती है, वो भूकंप है। और जहां प्लेट नीचे धंसती है या दूर जाती है, वहां पिघला मैग्मा ऊपर आ जाता है, वो ज्वालामुखी है।
तो ये एक सिद्धांत कितनी सारी चीजों को समझा देता है, पहाड़ बनना, भूकंप, ज्वालामुखी।
हाँ, यही इसकी खूबी है, इसने भूविज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
अच्छा, ये तो हुई अंदर की ताकतें जो जमीन बनाती हैं, लेकिन रेडफर्न बाहरी ताकतों की भी बात करते हैं जो जमीन को काटती छाटती हैं, अपरदन और अपक्षय।
हाँ, वेदरिंग और इरोजन, प्रकृति के मूर्तिकार जैसे पानी, बर्फ, हवा और गुरुत्वाकर्षण भी।
ये कैसे काम करते हैं?
ये लगातार चट्टानों को तोड़ते हैं, घिसते हैं और उनका मलबा बहाकर लिए जाते हैं। तो एक तरफ टिक्टोनिक्स पहाड़ खड़े करता है,
और दूसरी तरफ ये ताकतें उन्हें घिसकर छोटा करती रहती हैं। एक लड़ाई चल रही है।
बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली लड़ाई। पानी को ही देख लीजिए,
या
नदियां पहाड़ों में गहरी वी आकार की घाटियां काट देती हैं,
हाँ, ग्रैंड कैनियन जैसी,
या फिर मैदानों में सांप की तरह बल खाती चलती हैं, डेल्टा बनाती हैं।
और बर्फ, ग्लेशियर।
ग्लेशियर तो और भी ताकतवर होते हैं, वो जब खिसकते हैं तो नीचे की चट्टानों को खुरच देते हैं, यू आकार की चौड़ी घाटियां बना देते हैं और बहुत सारा मलबा, जिसे मोरेन कहते हैं, जमा कर देते हैं।
हवा भी तो रेगिस्तान में टीले बनाती है, चट्टानों को काटती है।
हाँ, और समुद्र की लहरें किनारों को लगातार तोड़ती रहती हैं, क्लिफ्स बनाती हैं या फिर रेत जमा करके बीच बना देती हैं।
तो हम अपने आसपास जो भी पहाड़, घाटी, मैदान देखते हैं, वो सब इन्हीं अंदरूनी और बाहरी ताकतों का नतीजा है, लाखों सालों का।
हाँ, और ये पूरी कहानी लिखी है चट्टानों में।
चट्टानों में कैसे? यहीं पर वो गहन समय या डीप टाइम वाली बात आती है क्या?
हाँ बिल्कुल, डीप टाइम मतलब हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी का इतिहास कुछ सौ या हजार साल का नहीं, अरबों साल का है।
और इस लंबे समय को हम इंसानी पैमाने पर सोच भी नहीं पाते।
सही कहा, लेकिन चट्टानें इस इतिहास को सहेज कर रखती हैं, परत दर परत। सबसे नीचे वाली परतें सबसे पुरानी, ऊपर वाली नई, ये है स्ट्रैटिग्राफी।
और इन परतों की उम्र कैसे पता चलती है?
उसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग जैसी तकनीकें हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चट्टान कितने लाख या करोड़ साल पुरानी है।
किताब में शैल चक्र, रॉक साइकिल का भी जिक्र है, ये क्या है?
रीसाइक्लिंग जैसा कुछ।
हाँ, एकदम, पृथ्वी का अपना रीसाइक्लिंग सिस्टम। तीन तरह की मुख्य चट्टानें होती हैं, आग्नेय, इग्नियस, जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं,
जैसे ग्रेनाइट।
हाँ, फिर है अवसादी, सेडिमेंट्री, जो पुरानी चट्टानों के टुकड़ों या जीवों के अवशेषों के जमने से बनती हैं, जैसे चूना पत्थर या बलुआ पत्थर।
और तीसरी रूपांतरित, जो पुरानी चट्टानों के ज्यादा गर्मी और दबाव में बदल जाने से बनती हैं, जैसे संगमरमर।
और ये तीनों एक दूसरे में बदल सकती हैं?
हाँ, यही तो चक्र है, कोई भी चट्टान टूटकर अवसादी बन सकती है, या दबकर रूपांतरित, या पिघलकर वापस मैग्मा और फिर आग्नेय, ये चक्र अरबों साल से चल रहा है।
वाह, पृथ्वी खुद को रिसाइकल कर रही है।
और इन्हीं अवसादी चट्टानों में हमें वो मिलते हैं, जीवाश्म।
फॉसिल्स।
बिल्कुल, जीवाश्म, पुराने जमाने के जीवन के सबूत। ये बताते हैं कि पहले कौन से जीव थे, कैसे दिखते थे, कब रहते थे।
डायनासोर के जमाने के जीवाश्म।
हाँ, और उनसे भी पुराने। इन्हीं से हमें जीवन के विकास का पता चलता है और उस समय का माहौल कैसा था ये भी पता चलता है।
तो चट्टाने और जीवाश्म तो हो गए, लेकिन पृथ्वी पर हवा, पानी, जलवायु, ये भी तो बहुत जरूरी हैं। क्या हमारा वायुमंडल हमेशा से ऐसा था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में बहुत अलग था, शायद जहरीला भी। फिर एंट्री हुई
जीवन की।
हाँ, छोटे छोटे बैक्टीरिया जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना सीखा, मतलब सूरज की रोशनी से खाना बनाना और ऑक्सीजन छोड़ना।
अच्छा, तो उन्होंने ऑक्सीजन बनाई।
हाँ, और अरबों सालों में धीरे धीरे उन्होंने पूरे वायुमंडल को बदल दिया, ऑक्सीजन भर दी। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। ये दिखाता है कि जीवन ने पृथ्वी को कैसे बदला है।
और जलवायु, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, क्या पहले भी जलवायु बदली है?
हाँ, कई बार। कभी पृथ्वी बहुत गर्म रही है, कभी बर्फ से ढक गई है, आइस एजेस। इसके पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव।
हमें कैसे पता?
ग्लेशियर की बर्फ की परतों से, समुद्र के नीचे जमा मिट्टी से। उनमें पुराने जमाने की हवा और तापमान का रिकॉर्ड होता है। आज की ग्लोबल वार्मिंग अलग इसलिए है क्योंकि इसमें इंसानी हाथ ज्यादा है।
और पानी? पानी के बिना तो कुछ भी नहीं।
पानी तो सब कुछ है। महासागर कैसे बने, जलचक्र कैसे काम करता है, कैसे यह तापमान को कंट्रोल करता है, चट्टानों को काटता है, और सबसे जरूरी, जीवन का आधार है।
हमने कहा कि जीवन ने वायुमंडल बदला, क्या और भी तरीकों से जीवन ने पृथ्वी को बदला है?
हाँ, बहुत तरीकों से। यही किताब का एक और जरूरी संदेश है। जेम्स लवलॉक की गैया परिकल्पना भी इसी तरफ इशारा करती है।
गैया?
हाँ, मतलब पृथ्वी और जीवन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जो खुद को संतुलित रखता है। पौधों ने मिट्टी बनाई, जीवों ने चट्टानों के टूटने की रफ्तार बदली। जीवन एक भूवैज्ञानिक ताकत है।
और अब हम इंसान भी एक भूवैज्ञानिक ताकत बन गए हैं, वो एंथ्रोपोसीन वाली बात।
हाँ, एंथ्रोपोसीन मतलब मानव का योग। विचार ये है कि पिछले कुछ सौ सालों में हमने पृथ्वी पर इतना असर डाला है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया है।
कैसे?
हम कार्बन चक्र बदल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जलाकर। हम प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं। हम जमीन का चेहरा बदल रहे हैं, खेती, शहर बनाकर। हम इतने सारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा असर अब प्राकृतिक ताकतों जैसा हो गया है।
ये तो बड़ी बात है, मतलब हम ग्रह को बदल रहे हैं।
हाँ, और ये जानना हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है, और शायद मौका भी कि हम सोच समझ कर आगे बढ़ें।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो शायद यही कि सब कुछ जुड़ा है।
हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी एक सिस्टम है, एक जगह का असर दूसरी जगह पड़ता है।
दूसरा, वो डीप टाइम वाला नजरिया, हमें लाखों करोड़ों साल के पैमाने पर सोचना होगा।
तीसरा, जीवन सिर्फ पृथ्वी पर रहता नहीं, उसने पृथ्वी को बनाया भी है, बदला भी है।
चौथा, बदलाव होता रहता है, पृथ्वी बदलते हैं और उसमें ढलने की जबरदस्त क्षमता है।
पांचवा, लेकिन जो बदलाव हम इंसान ला रहे हैं वो बहुत तेज है और बहुत बड़े पैमाने पर है। हम वाकई एक नई ताकत हैं।
छठा, इन चीजों को समझना, मतलब थोड़े वैज्ञानिक समझ रखना, अब सबके लिए जरूरी है।
और सातवां, इस पूरी कहानी में एक अचरज है, एक सुंदरता है। इसे समझना हमें इसकी देखभाल के लिए प्रेरित करता है। जैसे भारत में मानसून को ही देखें या हिमालय को, ये सब इसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।
किताब में कुछ बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे वो कि पृथ्वी और जीवन अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हाँ, और वो भूवैज्ञानिक सोच अपनाने की बात, मतलब समय को बहुत लंबे पैमाने पर देखना और ये समझना कि जो स्थिर दिखता है वो असल में बदल रहा है।
और ये कि हर पहाड़, हर घाटी, हर चट्टान एक कहानी है, बनने और बिगड़ने की।
और सबसे बड़ी बात शायद ये कि हम पहली ऐसी प्रजाति हैं जो समझ रही है कि हम खुद एक भूवैज्ञानिक ताकत हैं। ये जानना एक अभूतपूर्व जिम्मेदारी लाता है।
एक और बात जो मुझे जरूरी लगी, जलवायु परिवर्तन, ये कुछ ऐसा है जो पृथ्वी करती है, ये प्राकृतिक है। हाँ, हम उसे तेज कर रहे हैं, खतरनाक बना रहे हैं, ये समझना जरूरी है।
तो ठीक है, ये सब जानना दिलचस्प है, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम?
काम है, पहला, हम प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर समझ सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी कहाँ क्यों आते हैं, इससे तैयारी बेहतर हो सकती है।
रिसाइकलिंग को महत्व दें।
तीसरा, प्रकृति को देखने का नजरिया बदल सकता है। अगली बार पहाड़ों पर जाएं तो सिर्फ नजारा ना देखें, वहां की कहानी पढ़ने की कोशिश करें।
चौथा, आम जानकारी। दुनिया में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन पर क्या बहस है, ये सब समझने में मदद मिलती है।
और पांचवा, वो सिस्टम थिंकिंग, चीजों को जुड़े हुए रूप में देखना। ये सोच जिंदगी में और जगह भी काम आ सकती है।
तो कुल मिलाकर एक बहुत ही जरूरी और आंखें खोलने वाली किताब है ये। आपके लिए सबसे यादगार क्या रहा इसमें?
मेरे लिए तो शायद वही बात कि कैसे छोटे छोटे जीवों ने मिलकर पूरे ग्रह का वायुमंडल बदल दिया। जीवन की ताकत, ये कमाल की बात है।
और मेरे लिए शायद ये सोचना कि चट्टाने इतिहास की किताबें हैं और हम इंसान एक नई भूवैज्ञानिक ताकत। ये थोड़ा डराता भी है पर जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है।
हाँ, और यहीं पर वो सवाल आता है जो शायद हम सबके लिए है। अगर हम एक भूवैज्ञानिक ताकत है तो हम अपने पीछे कैसी भूवैज्ञानिक विरासत छोड़ना चाहते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।